There is a tremendous power in the singing of hymns.
और जो हम संगीत गाते हैं गीत गाते हैं उसमें बहुत अधिक सामर्थ्य है.
There's a tremendous power in music and in the words of music.
और जो जो संगीत है गीत है उसके जो लफ्ज है उसमें भी बहुत सामर्थ्य है.
And the greatest proof of that.
और उसका सबसे बड़ा हम इस प्रकार से साबित कर सकते हैं.
Is not in Christian music. But in the rock music,
वो मसीह गीत में नहीं लेकिन जो रॉक संगीत होता है उसमें.
You see how popular these worldly musicians are.
देखिएगा जो दुनियाई के जो संगीतकार हैं वो कितने प्रसिद्ध हैं.
And you see what a tremendous power they have on young people through their music.
और देखिएगा वो अपने गीत के द्वारा संगीत के द्वारा कितना अधिक प्रभाव बनाते हैं जो जवान लोग हैं.
Such wild satanic music. So many young people are going for in the world.
और संसार में देखते हैं कि बहुत अधिक ये गीतों के पीछे जवान लोग जाते हैं.
And you know we have rock music concert in Bangalore with the biggest maidans grounds in which they have it.
और सबसे बड़ा जो है मैदान जो बैंगलोर में है वहाँ पे बहुत बड़ा एक रॉक कंसर्ट हुआ.
And the way they assess the success of the concert is by how many chairs are broken at the end of the concert.
और वो संगीत का कार्यक्रम होने के बाद उसका जो सफलता है उसकी गिनती इस प्रकार से की गई कि कितने कुर्सियां वहां पे तोड़ी गई.
That means how many of the young people got wild and started breaking the chairs.
और वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और जो कुर्सियां हैं उनको तोड़ डालते हैं.
There are people who commit suicide, young people.
और जवान लोगों ने आत्महत्या किया.
I'm just telling you the tremendous power of music.
और ये जो गीत संगीत है उसमें बहुत ताकत है.
And it's not just the tune, the words that they sing in it.
और केवल लय नहीं उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं उसमें भी.
And unfortunately, a lot of Christian imitate that music.
और अभागापन की बात यह है कि बहुत सारे मसीह लोग भी जो है उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं.
They talk about Christian rock music.
यानी कि मसीह रॉक संगीत.
That is like Christian adultery.
यानी कि वो मसीह व्यभिचार की तरह हुआ.
और क्रिश्चियन मर्डर
या फिर मसीह खूनी.
दिस इज सेम कैटेगरी क्रिश्चियन रॉक म्यूजिक.
और वैसे ही जो मसीह रॉक म्यूजिक होता है वो कैटेगरी
की. देयर आर क्रिश्चियंस हु आर टेकन अप विद दैट.
और बहुत सारे मसीह लोग हैं जो उसमें जुड़ जाते हैं.
एंड आई हैव नेवर इन माय लाइफ फाउंड अ सीरियस डिसिपल ऑफ जीसस हुज टेकन अप विद दैट टाइप ऑफ म्यूजिक.
और मैंने कभी भी एक ऐसा गंभीर मसीह को उसके पीछे जाते हुए नहीं देखा.
And the other thing I find is this.
और दूसरी बात यह है.
See, when I look at Western Christianity today.
और पाश्चात्य के जो मसीह लोग हैं उनको मैं देखता हूँ.
I'm not against Westerners. I believe that all human beings are equal before God.
और मैं उनका विरोधी नहीं हूँ और परमेश्वर की नजर में सब एक समान है करके मैं विश्वास करता हूँ.
But when I see the standard of Western Christianity today.
लेकिन पाश्चात्य लोगों का जो स्तर है विश्वासी लोगों का जब मैं वो देखता हूँ.
I want to have nothing to do with it.
और उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं.
Even though I have a tremendous respect for Western Christians up to about 100 years ago.
100 साल पूर्व तक मुझे जो है उनके प्रति बहुत जो है सम्मान था.
Many of them I read the writings of John Wesley, D.L. Moody, Charles Finney.
और डीएल मूडी जॉन स्विनी इन सब का किताबें भी मैं पढ़ता था.
एंड द म्यूजिक ऑफ फैनी क्रॉसबी.
और फैनी क्रॉसबी का जो गीत
and
है
चार्ल्स वेस्ली.
और जॉन वेस्ली का.
बट व्हाट हैज हैपेंड इन क्रिश्चियनिटी इन द लास्ट 50 इयर्स.
लेकिन पिछले 50 साल में मसीहत में क्या हुआ.
आई हैव अ ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर द मिशनरीज हु केम टू इंडिया Before the Second World War.
और दूसरे महाविश्व युद्ध से पहले जितने मिशनरी लोग आए उनके प्रति मेरे को बहुत सम्मान है.
You know, people like William Carey.
जैसे कि विलियम कैरी है.
Amy Carmichael.
Amy Carmichael है.
John Hyde.
John Hyde करके हैं.
They were fantastically godly men.
और वो बहुत ही ईश्वर भक्त लोग थे.
I have moved among a lot of missionaries in the last 40-50 years.
और 40-50 साल के बीच में जो है बहुत सारे मिशनरी लोगों के बीच में मैं
From the West who have come to India.
जो पाश्चात्य देश से हमारे देश में आए.
My testimony is I don't have a respect for any of them.
लेकिन मेरा गवाही है कि अभी जो है किसी के भी प्रति मेरा कोई सम्मान नहीं।
They are not even 1% of those old time missionaries.
और जो पिछले जो पहले के शताब्दी के जो मिशनरीज थे उनके तुलना किया जाए तो 1% भी हम उनको नहीं मान सकते।
I am not a passionate Indian or anti-Western.
मैं ऐसा नहीं हूं कि पाश्चात्य लोगों का विरोधी हूं और भारतीयों से ज्यादा प्यार करता हूं।
But I respect people who are passionate about Jesus Christ.
लेकिन मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो परमेश्वर के प्रति उनका जुनून है।
I see very little of that today in Western Christianity.
लेकिन पाश्चात्य देशों में जो है अभी बहुत कम देखने को मिलता है।
So there is a difference between the type of songs that were written by Western Christians 100 years ago and are being written today.
लेकिन 100 साल पहले जो गीत उनके द्वारा गाया गया था उनमें बहुत भिन्नता है आज के युग में जो लिखा जा रहा है।
I told you music has a tremendous influence.
और मैं बताना चाहता हूँ संगीत में बहुत सामर्थ्य है।
You see the result of rock music.
देखिएगा जो रॉक म्यूजिक है रॉक संगीत है उसके फलस्वरूप क्या होता है।
Indians imitate the rock music from the western countries.
और जो भारतीय लोग हैं वो उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं उनके संगीत का।
The result is the same. In the wildness of those Western young people and the wildness of Indian young people who follow that music.
और जो उसकी नकल करते हैं उसका फल और वहाँ के लोग जो गाते हैं दोनों का फल एक ही है।
So when I see the type of songs being written nowadays by Western Christians.
और मसीह पाश्चात्य मसीह लोगों के द्वारा आज के युग में जो गीत लिखा जाता है।
Most of them are 3 or 4 lines. They repeat 10 times.
वो 3-4 जो है लाइन लिख देते हैं और उसको फिर से दोहराते हैं।
Maybe the music is very interesting.
हो सकता है कि उसका जो गीत है वो बहुत अच्छा हो।
Just look at the quality of young people. Such music is producing in Western countries today.
लेकिन आज का जो युग है उसका स्तर देखेगा उसका क्वालिटी देखेगा।
एंड द क्वालिटी ऑफ देयर लीडर्स
और उनके अगुए लोगों का भी जो स्तर है।
वन ऑफ द पॉपुलर म्यूजिक ग्रुप्स इज हिलसॉन्ग
और सबसे जो प्रसिद्ध है वो है हिलसॉन्ग।
एंड इट्स सॉन्ग लीडर फॉल डिवोर्सेस एंड मैरी समबडी एल्स
और उनके जो अगुए हैं वो शादीशुदा होने के बाद वो तलाक दे देते हैं और किसी और से शादी करते हैं।
आई डोंट केयर हाउ वेल ही राइट्स सॉन्ग्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन singing them.
और मैं इच्छुक नहीं हूँ उनको देखने के लिए और कितना खूबसूरत वो गीत लिखते हैं करके।
And one of their pastors was singing with an underwear on a platform in a program for ladies in an underwear.
और उनके एक अगुआ जो है वो केवल कच्छा पहन के जो है प्लेटफॉर्म में खड़े होकर उन्होंने गीत गाया।
You want to listen to such people?
क्या ऐसे लोगों की आप सुनना चाहते हैं?
I have zero interest in that.
और उसमें मेरे को कोई जो है इच्छा नहीं है।
I'd rather sing the songs of Fanny Crosby, Charles Wesley, who produced godly people in their generation.
और फैनी क्रॉसबी और चार्ल्स वेस्ली जिन्होंने अच्छे मसीह गीत गाए हैं उनका सुनना चाहता हूँ।
Look at the people who promote these other songs and look at the quality of the young people in their churches.
और देखिएगा ऐसे जो गीत आजकल लिखे जा रहे हैं और उनके जो विश्वासी लोग हैं उनका स्तर को देखेगा।
Look at the quality of the young people of these pastors and leaders.
उनके मानदंड को देखेगा उनके अगुओं के मानदंड को देखेगा।
Because music has a tremendous power.
क्योंकि गीत में जो है बहुत सामर्थ्य है।
And the young people sing those songs more than they listen to the messages.
और वो संदेश से ज्यादा आज के युग के लोग आज के पीढ़ी लोग वो गाने को सुनते हैं।
So I'm very careful in Bangalore about the type of songs we sing.
लेकिन मैं बहुत ही ध्यान देता हूँ जब वो गीत गाते हैं।
You know songs like You Are Beautiful Beyond Description.
जैसे कि हम गाना गाते हैं कि तुम जो है हमारे समझ से भी परे सुंदर हो।
Too wonderful for words.
और तुम्हारे शब्द बहुत ही खूबसूरत हैं।
I don't know whether the chap is singing to his girlfriend or to Jesus Christ.
और मैं नहीं जान पाता हूँ कि उसने अपने गर्लफ्रेंड के लिए गाया या फिर प्रभु यीशु के लिए।
These are all half-converted people who wrote songs for their girlfriends in the olden days.
और ये ऐसे लोग हैं जो अधूरे मन फिराए हैं या उधार पाया है और हो सकता है उन्होंने अपने girlfriend के लिए
लिखा। Now they write songs for Jesus in order to make money.
और वो पैसे बनाने के लिए अभी प्रभु यीशु मसीह के गीत गाते हैं।
They sang worldly songs to make money. Now they sing Christian songs to make money.
पहले संसार के गीत गाते थे ताकि पैसे कमाए अभी वो मसीह के गीत गाते हैं पैसे कमाने के लिए।
I want to ask you a question. All of you answer this.
एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ आप सब लोग जवाब दीजिएगा।
Supposing you hear two preachers.
यहाँ पे मान लीजिएगा दो प्रचारक हैं।
And one man is preaching because of love for Jesus Christ.
और एक आदमी जो है प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने के कारण वो प्रचार करता है।
Another person is preaching for money.
और दूसरा एक प्रचारक है वो पैसे के लिए प्रचार करता है।
Who do you think would more likely have a word from God?
और किसके पास परमेश्वर से सबसे अधिक संदेश होगा?
You answer that.
आप लोग जवाब दीजिए.
The one who is preaching out of love for Christ or the one who is preaching for money?
एक प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है इसलिए वो प्रचार कर रहा है और दूसरा पैसे से प्रेम करता है इसलिए वो प्रचार कर रहा है.
I would never listen to a man who is preaching for money.
और मैं उस व्यक्ति का प्रचार कभी नहीं सुनना चाहता जो पैसे के लिए जो है प्रचार कर रहा है.
Sure, you agree also.
और मैं जानता हूं कि आप लोग भी सहमत
हैं. Now, here is a songwriter who writes songs because he loves Jesus, and here's a songwriter who writes songs because he makes money out of it.
यहां पे देखिएगा एक संगीतकार है जो कि परमेश्वर से प्रेम करता है इसलिए संगीत लिखता है और दूसरा एक व्यक्ति है वो पैसे से धन से प्रेम करता है इसलिए वो संगीत लिखता है.
Who do you think will have a Holy Spirit inspired song?
आप किसको मानते हैं कि किसके अंदर पवित्र आत्मा है पवित्र आत्मा के जरिए गीत गाया.
The same rule as a preacher who preaches for money.
और वो कानून दोनों के ऊपर लागू रहता है प्रचारक जो पैसे के लिए प्रचार करता है या फिर गीत के लिए.
That is the reason for the shallow songs today.
और यही कारण है गिरा हुआ स्तर का एक गीत निकलने का.
These song Christian songwriters have become millionaires because they write for money.
और प्रभु यीशु मसीह के लिए जो गीत गाते हैं वो आज करोड़ों में कमाते हैं क्योंकि वो पैसे के लिए गीत लिखते हैं.
Songs are copyrighted. Anybody who uses it has to pay money to the company.
और इसका कॉपीराइट होता है. मान लो कोई भी इसको खरीदता है इनके सीडी को तो उसके लिए पैसे देना पड़ता है.
Can you imagine Jesus or the apostles doing that?
क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह या उनके चेलों ने ऐसा करते तो?
Who are you following?
आप किसके पीछे हैं किसके चेले
हैं? Those who follow Jesus and the apostles?
क्या आप प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों के
or
चेले
those
हैं?
Who have a nice melody?
या फिर जो बहुत अच्छे सुंदर लय के साथ गाते हैं?
Sorry to say, around the world I find Christian leaders with zero discernment in this area.
और ऐसे क्षेत्र में मैंने देखा है कि मसीह अगुए लोग उनको बिल्कुल भी समझ नहीं है परखने की.
I see the result in the children of those leaders also.
और उनके अगुओं के बच्चों के अंदर का जो स्तर है वो भी मैंने देख लिया है.
We have to be very careful in CFC that we proclaim the new covenant.
और CFC कलीसिया के अंदर जो कि नई वाचा के अधीन है उनके प्रति मैं बहुत ध्यान पूर्वक
not only in the message but in the songs.
ना केवल संदेश में और गीत में भी मैं बहुत ध्यान बरतता हूं.
Make a list of all the songs you sing.
और जितने भी आप गाना गाते हैं उसकी एक सूची बनाएं.
In a whole year.
और पूरे साल में.
And see if there's one song which talks about overcoming sin.
और क्या वो उसमें से एक भी गीत ऐसा है जो आपको पाप के ऊपर फतह पाने के लिए सामर्थ्य देता है?
We're just saying God is good.
हम गाते हैं कि परमेश्वर भला है.
It's true.
वो सच है.
But because he's good, he helps me to be free from sin.
और वो अच्छा है इसलिए वो मेरी मदद करता है पाप के ऊपर जय पाने के लिए.
But what most people think is He gives me money and he gives me a good house and he gives me good friends.
लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए गाते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा पैसा देता है रहने के लिए मकान देता है अच्छे दोस्त देता है.
If he leaves me in my sin, he is not good.
लेकिन अगर जो वो मुझे पाप में छोड़ देता है तो वो भला नहीं है अच्छा नहीं है.
If he leaves me in a pit and in that pit gives me money and food, he is not a good God.
अगर एक खड्डे में मुझे छोड़ देता है और वहां पे मुझे खाना और पैसे दे देता है तो वो भला नहीं है.
He has to pull me out of the pit first.
और सबसे पहले उसका जिम्मेदारी है कि वो मुझे उस खड्डे से निकाले.
I just want to warn you exactly what I have shared many times in the church in Bangalore.
और मैं चेतावनी देना चाहता हूं जैसे कि मैंने अभी बताया वैसे ही बैंगलोर की कलीसिया में.
Be careful about these things.
और इन सब चीजों में हम सावधानी बरतते हैं.
There's another generation growing up and you will lose them if you don't emphasize the new covenant.
हाँ, अगर जो हम नई वाचा को ज्यादा जोर नहीं देते हैं तो नई एक पीढ़ी आ रही है और हम उनको खो बैठेंगे.
And even a lot of visitors who come.
और बहुत सारे नए लोग भी आते हैं.
Never enter into the new covenant. They just sing nice songs.
और नई वाचा में बगैर प्रवेश किए अच्छे गात गाने
से कोई मतलब tremendous power.
इसलिए संगीत में बहुत ताकत है.
You must follow the words that we sing.
और जो गाना गाते हैं उसके शब्दों के ऊपर भी हमें ध्यान देना है.
You know, many people say we had a good time singing.
और कई लोग बोलते हैं कि आज के गीत में हमने अच्छा समय बिताया.
I say we don't sing to have a good time.
और मैं कहता हूं कि हम समय बिताने के लिए नहीं गाना गाते.
Singing to see whether God had a good time.
और
listening to our worship.
हम इसलिए अच्छा गाना गाते हैं ताकि परमेश्वर उसका आनंद उठाए.
Was God delighted?
क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ?
But most people are just thinking of the melody and how well we sang.
और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किस प्रकार से हमने गाया और किस खूबसूरती से गाया.
For example, when we sing a song about the crucifixion of Christ.
उदाहरण के तौर पे प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में हम प्रचार करते हैं गाना गाते हैं.
Do you think about it?
क्या हम उसके बारे में याद करते हैं?
It says in heaven they sang a song.
और हम ऐसे बोलते हैं कि स्वर्ग में गाना गाते हैं.
A new song it says.
और नया गीत वहां पे गाया जाता है.
And the new song is the lamb that shed his blood for us
aur wo
and
naya,
redeemed us
aur wo naya geet ye hai ki memna jisne hamare liye lahu bahaya.
When I read that in Revelation 5,
jab maine wo prakashit vakya 5ve adhyay mein padha,
how is that a new song?
Aur maine kaha ki ye ek naya geet kis prakar se ho sakta hai?
I've heard it for all my life that Jesus died for my sins,
kyunki maine apne jeevan kaal mein pure dinon mein suna hai ki prabhu yeshu masi mara.
As I meditated on it,
kya us pe maine adhyayan kiya, manan kiya,
there is not a new message in heaven that oh the lamb died for our sins,
aur ye swarg mein koi naya sandesh nahi hai ki memna ka vadh kiya gaya.
And the Lord showed me it's new because it is fresh,
aur ye parmeshwar ne mujhe bataya ki ye naya isliye kyunki wo tarotaaza hai.
You know, like difference between a rotten apple that you've kept at home for 2 months
aur 2 mahine se rakha hua sada hua ek sep,
and something you got today fresh,
aur ek tarotaaza phal aaj lekar aaye.
We would never offer rotten old fruit
hum jo
to a visitor,
jo hamare ghar mein mehman aate hain unko sada hua wo sev nahi denge.
You'd never give rotten old 2 month old fruit,
2 mahine se sad raha hua ek sev hum unko nahi denge.
Always give what is fresh,
aur jo tarotaaza hai hum wo denge.
And I asked myself,
aur main apne aap se pucha,
am I offering a fresh worship to God?
Kya main parmeshwar ke prati ek nayi aradhana chada raha hu ya nahi?
And I have to be particularly careful when I'm singing songs which I know the words very well and I know the tune very well,
aur khaas karke mujhe wo jo geet jo main lagatar gaata aa raha hu pehle se hi unke lafzon aur unke lay mein mujhe zyada dhyan dena hai.
You know, in the olden days when we didn't have projection of words on the screen,
purane zamane mein jab projector nahi hota tha aur screen mein nahi dikhaya jata tha,
we used to sing with song books in our church.
So hamare kalisya mein jo hai kitab hoti thi, pustak hoti thi,
when they're singing a song which I very know very well,
aur wo geet jo bilkul mujhe जाना पहचाना है,
I don't even have to look at the book,
और केवल मुझे उस किताब
में देखना है,
क्योंकि हर लफ्ज को, हर शब्द को मैं जानता हूं, उसका ट्यून को जानता
हूं. And the danger I found for myself,
और मैंने अपने आप में देखा,
I'll sing the whole song and at the end of it I ask myself, what did I sing just now?
मैं पूरा गीत गाता हूं और उसके बाद आखिर में पूछता हूं, मैंने क्या गाया आज?
And I say, Lord, I'm sorry, I didn't even think about what I was singing.
फिर मैं परमेश्वर से माफी मांगता हूं, परमेश्वर मैंने क्या गीत गाया वो उसको बगैर समझे मैंने गीत गाया.
This is what I used to do.
और यही मैं करता था.
When the song leader says, let's sing the next song,
और जब अगला गाना संगीतकार गाते थे,
I would turn back to the old page.
तो पुराने पन्ने की ओर मैं जाता था.
And I say, Lord, I'm sorry, that last song I didn't sing from my heart.
तो मैं परमेश्वर से कहता था, परमेश्वर तू मुझे माफ कर दे क्योंकि जो पिछला गाना है वो मैंने अपने दिल से नहीं गाया.
While they were singing the next song,
और जब आप अगला गाना गाते हैं,
I was quietly reading out the words of the previous song.
और जो इससे पहले गाना गाया उसके लफ्जों को, उसके शब्दों को मैं पढ़ता
हूं. And I said, Lord, I want to mean this now.
और फिर मैं कहता हूं कि परमेश्वर जो मैंने गाना गाया है उसका मतलब रखना चाहता हूं.
I did that many times.
और मैंने कई बार किया है.
Till the time came in my life where I could not sing a song without meaning every sentence.
Aur ek aisa samay mere jeevan mein aaya bagair matlab ke main geet ko nahi ga pata tha.
And even now,
aur aaj bhi,
when I sing about the love of Jesus for me,
jab main prabhu yeshu masi ke prem jo mere prati hai uske bare mein geet gaata
hu, many times tears come in my eyes,
aur mere aankhon mein aansu aa jate hain,
because it's as if I'm hearing for the first time Jesus died for a sinner like me.
ऐसे जैसे कि मैंने पहली बार सुना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा.
Like we sang in that song.
जैसे कि हमने वो गीत गाया.
In Hindi, Lord, to save us from our sin, you gave your son as a sacrifice.
कि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने बेटे को बलि के रूप में दिया.
Do you remember that?
क्या उस गीत को आप याद करते हैं?
We just sang it.
हमने अभी अभी गाया,
to save us from our sin,
कि उसने हमें पापों से बचाया.
You gave your son as a sacrifice,
उसने तूने अपने बेटे को जो है बलि के रूप में दिया.
Or have you forgotten that we sang that?
क्या आप लोग गीत गा के भूल चुके हैं उसको?
How do you feel when you read those words?
आपने जब उन शब्दों को पढ़ा तो आपको कैसा लगा?
To save me from my sin,
मेरे पापों से बचाने के लिए,
You gave your son as a sacrifice.
तूने अपने बेटे को जो है बलिदान के तौर पे दे दिया.
How can you sing that without feeling moved in your heart?
और बगैर आपका दिल हिले आपने किस प्रकार से उस गीत को गाया?
You see how we become saying things which we don't mean.
देखिएगा किस प्रकार से हम बगैर मतलब रखे हम बोलते हैं.
This is the tragedy of Christianity today.
और यही अभागापन है हमारी मसीहत कलीसिया में.
So I often say Christians tell more lies to God on Sunday than on any other day.
Aur main hamesha ye kehta hu ki itwar ke din masih log sabse adhik parmeshwar se jhoot bolte hain dusre sabhi dinon se zyada.
They don't even think what they're saying.
Kyunki wo bagair soche hi geet gaate hain.
I want to encourage you to take seriously every song you sing.
Main protsahit karna chahta hu ki har ek geet ko aap gambhirta purvak le.
The reason is we don't recognize the presence of Jesus here.
क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने उसको गंभीरता पूर्वक नहीं लेते.
Can you imagine if Jesus was here physically?
ऐसे सोचेगा शारीरिक तौर से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है.
And I sing, yeah, my Jesus, I love you. I know you are mine. For thee, all the pleasures of sin I resign. Can you imagine singing like that?
इस प्रकार से सर को इधर उधर आँखों को इधर उधर देखते हुए भी बोलें कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू बहुत खूबसूरत परमेश्वर.
I give up all the pleasures of sin. I give up the pleasures of sin.
और मैं सारे जो दबाव है पाप के उसको छोड़ता हूँ.
The sacredness of singing has disappeared.
तो उसकी जो पवित्रता है वो दूर हो जाती है.
And it's because of these modern Hillsong type of songwriters.
और जैसे कि Hillsong के जो लेखक वगैरह हैं.
Who wrote for money?
जो कि पैसों के लिए लिखते हैं.
Whose pastors will come in underwears on the platform?
और उनके पासवान लोग जो है वो underwear में आएंगे.
You see that on YouTube.
और वो YouTube में देखेगा.
The whole world can see it.
और पूरे लोग उसको देख सकते हैं.
Absolutely shameful.
देखिएगा कितना लज्जापूर्वक बात है.
Am I going to follow such people?
क्या ऐसे लोगों का हम पीछा करेंगे?
Not in a thousand years.
और अगले हजार साल में भी नहीं.
I'd rather follow those old songwriters.
जो पुराने लेखक हैं.
It is money that has taken over the kingdom of God.
और परमेश्वर के राज्य को पैसा जो है उसके ऊपर ले रहा है.
That is why we have taken such a strong stand against money.
इसलिए हमने पैसों के विरोध में जो है कदम उठाए हैं.
We have 120 elders in our churches. Nobody takes money for their preaching.
और हमारे कलीसिया में 120 बुजुर्ग हैं, लेकिन कोई भी प्रचार के लिए पैसे नहीं लेता है.
All the books we have written, there's no royalty for those books.
और जितने किताब लिखे गए हैं, उसमें भी कोई रॉयल्टी नहीं लेते हैं.
In Western countries, everybody gets millions of rupees royalties for the books they write.
और पाश्चात्य देशों में देखते हैं कि जो किताबें वो लिखते हैं, उसके लिए सैकड़ों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाते हैं.
Christians, pastors, every one of them.
और पास्टर्स और जो अगुए लोग हैं वो लोग भी ऐसे करते हैं.
इट्स मनी दैट हैज लेड पीपल अवे फ्रॉम गॉड.
और जो पैसा है यही परमेश्वर से इंसान को दूर करता है.
डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
प्रिय भाई और बहनों,
आई कैन नॉट चेंज योर हार्ट्स, आई कैन ओनली वार्न यू.
मैं आपके दिलों को नहीं बदल सकता.
सी द रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सिंगिंग इन योर ओन कॉन्ग्रीगेशन.
और अपनी सभा के अंदर इस प्रकार के गीत संगीत गाने के फलस्वरूप क्या होता है देखिएगा.
We say we want it whole, we want wholehearted young people who are passionately in love with Jesus.
हम चाहते हैं कि पूरे दिल से जो परमेश्वर के प्रति जुनून दिखाते हैं वैसे जवान लोग चाहिए.
I'll tell you three ways in which I have personally learned to be passionately in love with Jesus Christ.
प्रभु यीशु मसीह के प्रति जुनून, उनके प्रति प्रेम दिखाने के लिए तीन ऐसे मार्ग हैं.
You take it seriously. It can be true for you as well.
अगर जो आप इसे भी गंभीरता पूर्वक लेंगे तो ये भी आपके लिए यथार्थ बनेगा.
See the difference in the old covenant and the new covenant is this.
पुरानी वाचा और नई वाचा में जो भिन्नता है वो ये है.
Many differences, but one is this.
और उसमें से कई सारे वचन हैं, लेकिन उनमें से एक.
In the old covenant, you obeyed God out of fear.
और पुराने वाचा में देखते हैं कि आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं भय के कारण.
Or out of selfishness.
या स्वार्थीपन से.
I'll show you that in Deuteronomy 28.
Vyavastha Vivaran 28.
Sometime when you get time, you must read this chapter.
जब आपके पास समय मिले तो आप इसको पढ़िएगा.
This is the old covenant gospel.
और ये पुरानी वाचा का सुसमाचार है.
You know what it says?
क्या आप जानते हैं क्या कहता है?
It's got two parts.
ये दो हिस्से में है.
The first 14 verses.
पहला 14 जो वचन है.
God says.
परमेश्वर कहता है.
If you obey me.
अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे.
I will bless you materially and physically.
मैं तुम्हें वस्तु चीजें देकर तुम्हें आशीष दूंगा.
You'll make plenty of money.
और तुम बहुत सारा धन कमाओगे.
You will never be in debt.
और कभी कर्जदार नहीं बनोगे.
Your children will be blessed. Your fields will be blessed, your animals will be blessed.
तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जानवर, तुम्हारी खेती बाड़ी जो है आशीषित होगा.
Those days their wealth was in their fields and their animals.
क्योंकि उन दिनों में धन यानी कि उनका जो खेती बाड़ी है और उनके जानवर है.
You obey me, all will be blessed materially.
तुम अगर जो मेरी आज्ञाएं मानोगे तो वस्तु के तौर से तुम आशीष पाओगे.
Not one word about victory over sin.
लेकिन वहां पे पाप के ऊपर जय के बारे में एक भी वचन नहीं है.
Obedience was all external.
और जो आज्ञा पालन है वो बाहरी तौर से है.
डोंट मर्डर, डोंट किल.
یعنی کہ
ڈونٹ کمٹ اڈلٹری,
قتل نہ کریں, ویبیچار نہ کریں,
ڈونٹ ٹیل لائز,
اور جھوٹ نہ بولیں,
ڈونٹ بیئر فالس وٹنس ان دی کورٹ,
دوسروں کے پرتی جھوٹا گواہی نہ دیں,
اینڈ تھنگز لائک دس,
اور ایسی ایسی باتیں,
ڈونٹ ورشپ آئیڈلز,
اور مورتی پوجا نہ کریں,
اینڈ مینی ادر کمانڈمنٹس اباؤٹ ایکسٹرنل تھنگز,
اور باہری طور سے بہت ساری آگیاں,
پے یور ٹائتھ,
اپنا ٹائتھ دیں,
God has blessed your field and your animals, give 10%.
اور اپنے جانوروں میں سے اور اپنے کھیتی باڑی کے جو فصل ہے اس میں سے سب سے بہترین چیزیں,
so that the Levites can take care of their needs.
تاکہ لیوی لوگ جو ہیں اپنی دیکھ بھال کر سکیں.
And then the remaining 54 verses.
اور باقی جو 54 verses تک ہے
is threats of judgment.
اور وہ ہے نیائے کے بارے میں.
If you don't obey me,
اگر جو تم میری آگیاؤں کا پالن نہیں کرو,
Lord will smite you, verse 27, with sicknesses from which you can never be healed.
اور ایسے ایسے بیماریاں جو پرمیشور دے گا جس سے کبھی تم ٹھیک نہیں ہو پاؤ گے.
So it was the offer of material prosperity or the threat of sickness and all which made people obey.
اور ان زمانے میں لوگ اس لیے آگیا پالن کرتے تھے تاکہ وہ واستوک طور سے آشیش پائے یا پھر بیمار نہ پڑے.
But that is the gospel being preached today also.
اور وہی سوسماچار آج بھی پرچار کیا جاتا ہے
بائی مینی پریچرز,
کئی پرچارکوں کے
دوارا. کم ٹو جیزس,
پربھو یشو مسیح کے پاس آئیں, ہی ول میک
یو رچ,
وہ آپ کو دھناڑی بنائے گا,
ہی ول ہیل یو,
وہ آپ کو چنگائی دے گا,
ہی ول گیو یو بیٹر ہاؤس بیٹر کار,
وہ آپ کو اچھا مکان اچھا گھر دے گا.
ٹیل می, از دیئر اینی بڈی ان دی ورلڈ ہو ڈزنٹ وانٹ ٹو بیکم فائنانشلی رچ؟
کیا سمسار میں ایسا کوئی بھی ویکتی ہے جو دھناڑی نہیں بننا چاہتا؟
Is there anybody in the world who doesn't want to be physically healthy?
Kya samsar mein aisa koi vyakti hai jo sharirik taur se swasthi nahi rehna chahta?
Not even one.
Koi ek bhi vyakti nahi.
Even a beggar wants to be rich.
Yahan tak ki bhikhari bhi ameer banna chahta hai.
The billionaire wants to be more rich.
Aur jo crorepati hai wo aur ameer banna chahta hai.
Everybody in a hospital wants to be healed.
Aur jitne bhi hospital mein pade hue hain wo log mareez log changa hona chahte hain.
If that is the gospel with which Jesus came, why did the world kill him?
تو پھر اگر جو یہی سوسماچار لے کر پربھو یشو مسیح سمسار میں ہے تو انہوں نے اس کو کیوں کروس پہ چڑھایا مارا؟
Why did the world, it says he came to the world and the world did not receive him.
پھر سمسار میں آیا اور سمسار نے اس کو کیوں نہیں گرہن کیا؟
Why would the world reject someone who came offering money and health?
پھر ایسے ایک ویکتی جو پیسہ دینے کے لیے چنگائی دینے کے لیے آیا اس کا سمسار نے ترسکار کیوں کیا؟
That is the clearest proof that that is not the gospel that Jesus preached.
اور یہ سدھ کرتا ہے کہ ایسا سوسماچار لے کر پربھو یشو مسیح نہیں آیا.
But how is it so many millions of Christians are believing that today?
پھر لاکھوں کروڑوں جو ہے وشواسی لوگ کیوں ایسا وشواس کرتے ہیں؟
I will tell you.
میں بتانا چاہتا ہوں.
Because today's Christians don't read the Bible.
کیونکہ آج کے مسیح لوگ وچن کو نہیں پڑھتے ہیں, بائبل کو نہیں پڑھتے ہیں.
They spend more time in a day watching television than reading the Bible.
اور وہ زیادہ سمے جو ہے ٹیلیویژن دیکھنے میں بتاتے ہیں نہ کہ بائبل پڑھنے میں.
The parents sit with their children watching television more than reading the Bible.
اور بچوں کے ساتھ ماتا پتا زیادہ سمے ٹی وی دیکھنے میں بتاتے ہیں, بائبل پڑھنے میں نہیں.
And then they say, oh, my children are going astray.
پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے مارک سے بھٹک گئے ہیں.
It's like you go to a doctor.
اور آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں.
And say, my children are sick.
بولتے ہیں کہ ہمارے بچے بیمار ہیں.
Why? What did you feed them?
تم نے ان کو کیا کھلایا؟
Well, I gave them a spoonful of poison every day.
میں نے ہر دن ان کو چمچ بھر کے زہر پلایا.
Not much, doctor, just one spoon of poison every day.
زیادہ نہیں پلایا, کیول ایک چمچ پلایا.
And the doctor says, are you crazy?
تو ڈاکٹر بولے گا کیا تم پاگل ہو؟
You give a spoonful of poison every day to your child and then you wonder why they are sick.
اور آپ ایک چمچ بھر کے زہر پلاتے ہو پھر بولتے ہو کہ وہ بیمار ہے؟
You sit watching television with your children every day and wonder why they are not following Jesus.
ہاں, ہر روز جو ہے ان کے ساتھ ٹی وی دیکھنے میں سمے بتاتے ہو پھر وہ کیوں نہیں راستے سے بچیں گے؟
There is no difference between that and feeding them poison every day and wondering why they are sick.
اور اس میں کوئی بھنتا نہیں, آپ زہر پلا رہے ہیں اور پھر ٹی وی دکھا رہے ہیں, دونوں ایک جیسے ہیں, پھر وہ ماسک سے تو اوشیہ بٹکیں گے, بیمار ہوں گے.
What to do, brother? They love that poison.
ہاں کیا کریں بھائی, وہ ان کو یہ زہر پسند ہے.
سو بیکاز دے لو اٹ یو فیڈ اٹ, یو گاٹ سم, ہیو یو گاٹ سم سینس؟
ہاں, کیا ان کو یہ پسند آئے گا تو کیا آپ ان کو زہر پلائیں گے؟
وی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ واٹ آر چلڈرن ڈو آؤٹ سائڈ دا ہاؤس.
اور گھر کے باہر وہ کیا کرتے ہیں ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے.
بٹ ایٹ لیسٹ ان سائڈ آر ہاؤس,
کم سے کم ہم گھر کے اندر تو ان کے پرتی دھیان پوروک ہو سکتے ہیں.
آئی ریمبر وین مائی چلڈرن وار گروئنگ اپ, آئی سیڈ I am the head of this house, remember.
جب میرے بچے بڑھ رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ دھیان دے کہ میں اس گھر کا مکھیا ہوں.
Certain type of music I will never allow in this house.
कुछ प्रकार के जो गीत संगीत है मैं बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा.
Certain books and magazines I'll never allow.
और कुछ प्रकार के जो किताबें हैं वो बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा घर पे रखने के
लिए. I don't care how much you argue or whatever it is.
मैं नहीं जानता कि तुम कितना मुझसे बहसबाजी करोगे.
I am the head of this house and I will never give up that headship.
और मैं इस घर का मुखिया हूं और अपना मुखियापन कभी भी मैं नहीं छोड़ूंगा.
When you leave my house, do what you like.
जब तुम घर से जाओगे,
do what you like.
तो तुम्हें अच्छा लगे करो.
Then you're on your own.
तो फिर तुम अपने पर हो.
And if you go astray after you have left my house,
मेरे घर को छोड़ने के बाद मार्ग से भटक जाते हैं, गलत राह पे जाते हो.
I will not blame you.
फिर मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा.
I'll blame myself.
मैं अपने ऊपर दोष ठहराऊंगा.
I'll say 18 years I had you in my house.
और 18 साल तक मैंने तुम्हें अपने घर पे पाला.
All my four sons left home for college when they were 18.
और 18 के बाद चारों के चारों जो मेरे पुत्र हैं वो कॉलेज में चले गए.
18 years I had you in my house.
18 साल तक मैंने उनको घर पर रखा.
And I did not guide you in the right way.
क्या मेरे को समय नहीं मिला कि सही मार्गदर्शन करने के लिए?
Whom should I blame? Myself.
फिर मुझे किसको दोषी ठहराना? मुझे खुद को.
Okay, if I made a mistake.
अगर जो हो सकता है मैंने गलती किया.
I said, you know what? I'll pray for you.
क्या जानते हो तुमने यार मेरे लिए क्या प्रार्थना किया?
If I hear you're going astray.
अगर जो मैं सुनता हूँ कि तुमने गलत मार्ग पकड़ा.
I'll pray you'll have a car accident.
तो मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम एक दुर्घटना में फंस जाओ.
I pray that God will break your legs.
मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारी टांगे टूट जाए.
I pray that you'll lie in a hospital with broken legs.
और मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम अस्पताल में भर्ती हो जाए टूटे हुए पांव के साथ.
Much more preferable than you're going to hell.
और तुम नरक में जाने से बेहतर यही है.
I meant it.
और मैं इसका मतलब रखता हूँ.
I take it seriously.
और मैं इसे बहुत गंभीरता पूर्वक लेता हूँ.
Because why did God unite me with my wife and give us children?
फिर क्यों परमेश्वर ने मेरे को मेरी पत्नी के साथ जोड़ा और हमें संतान दिए?
It says in Malachi chapter 2. Listen to this.
मलाकी दूसरे अध्याय में देखते हैं.
Malachi chapter 2 verse 15.
मलाकी 2 उसका 15 में देखते हैं.
And there are many. It's translated in slightly different ways in some translations.
कुछ translationों में तर्जुमा में जो है अलग तरीके से किया गया है.
But here is what it says in the margin of my Bible.
देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है करके हम पढ़ेंगे.
Malachi chapter 2 verse 15.
मलाकी 2 उसका 15.
So it may be a little different in your translation.
हो सकता है कि आपके बाइबल में थोड़ा फर्क हो.
But here's what it says.
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
Why did the Lord make you one with your wife? Just translate me.
और तुम में से
Why did the Lord make you one with your wife?
तुम्हारी पत्नी के साथ परमेश्वर ने एकजुट क्यों किया?
Because he was seeking a godly offspring.
क्योंकि परमेश्वर जो है योग्य संतान चाहता है.
Godly, that means a God fearing offspring.
क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला एक संतान चाहते हैं.
That's a great verse.
और ये बहुत ही अच्छा है.
Why did God make you one with your wife?
परमेश्वर ने आपके पत्नी के साथ एकजुट क्यों किया?
Because he was seeking godly children.
क्योंकि वो ईश्वर भक्त बच्चों को संतान चाहता है.
I understood why God made me one with my wife.
और मैं समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे मेरी पत्नी के साथ क्यों जोड़ा?
Not just to produce children.
केवल बच्चों को पैदा करने के लिए नहीं.
Any idiot can produce children.
कोई भी बेवकूफ बच्चों को पैदा कर सकता है.
To produce godly children,
क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर के भय मानने वाले संतान पैदा हो.
That depends on how I bring them up.
और ये सब निर्भर रहता है किस प्रकार से मैं उनका पालन पोषण करता हूँ.
That is a very important part of the new covenant.
और ये नई वाचा का बहुत प्रमुख बात है.
You know, in the old covenant, they had a celebration called the Passover every year.
और पुराने नियम में देखते हैं कि फसह का पर्व मनाया जाता है हर साल.
And the Lord told them. Through Moses.
और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने
Every year when you celebrate the Passover,
जब कभी तुम फसह के पर्व को मनाते हो,
you have to go through a ritual.
तो तुम्हें एक रीति रिवाज से जाना होगा.
The oldest son must ask the father.
जो 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 सबसे जेठा बेटा है, यानी कि सबसे बड़ा वाला पुत्र है, वो पिता से पूछना चाहिए.
Daddy, what does this mean?
पिताजी, इसका अर्थ क्या है?
That's what they taught that in Exodus. You read that.
और निर्गमन की किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है.
And the father must say.
और पिता को बताना जरूरी है.
Our ancestors were slaves in Egypt.
कि हमारे जो पूर्व पिता लोग थे वो गुलाम थे मिस्र देश में.
God told us to put the blood on the doorposts.
परमेश्वर ने कहा कि दरवाजे की वाट पर जो है लहू छिड़कना है.
And the angel of death passed over our house.
और मृत्यु का जो स्वर्गदूत है वो हमारे घर को छोड़कर आगे निकल जाएगा.
That is why you have the feast of pass over.
और इसीलिए फसह का पर्व मनाया जाता है.
And we were delivered that night.
और उस रात को हम छुड़ाए जाते हैं.
And that is why we are a free people.
और इसलिए हम आजाद लोग हैं.
Next year.
और अगले साल.
Children already know this.
बच्चे ये जानते हैं.
But again, the child has to ask.
लेकिन फिर भी इसके बावजूद उनको फिर से पूछना है.
Daddy, what does this mean?
कि पिताजी इसका अर्थ क्या है?
And again, he has to say.
और फिर से उसको दोहराना है.
10 years later.
10 साल के बाद.
They've already done it 10 times.
और 10 बार वो सुन चुका
है. Again, he has to ask. Daddy, what does this mean?
फिर से वो पूछता है कि पिताजी इसका अर्थ क्या है?
Our ancestors were slaves in Egypt.
हमारे पूर्व पिता लोग वो गुलाम थे मिस्र देश में. और लहू को छिड़का उन्होंने दरवाजे पर और मृत्यु का जो स्वर्गदूत है वहां से निकल गया.
Can you imagine after living in a house for 20 years what that child has got in his head?
हाँ, क्या आप सोच सकते हैं कि 20 साल के बाद उस बच्चे के दिमाग में क्या होगा?
It was by constant repetition.
और लगातार उनको बताया जा रहा है.
That's how they learned.
और इसी प्रकार से उन्होंने सीखा.
God said you must do that to your children.
और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बच्चों के साथ यही करना है.
And that's why now 3500 years later the Jews are still so devoted. There is a godly generation among the Jewish people.
और इसलिए 3500 साल बीतने के बावजूद भी यहूदी लोग आज भी श्रद्धापूर्वक हैं परमेश्वर के प्रति.
They are not Christians.
वो मसीह लोग नहीं है.
But they know that their ancestors were delivered by Jehovah from Egypt.
लेकिन वो जानते हैं कि उनके पूर्व पिता लोग जो हैं यहोवा परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए थे.
Every religious Jew, they are not born again, but every religious Jew knows that.
और हर एक यहूदी लोग वो हालांकि उन्होंने उद्धार नहीं पाया लेकिन वो जानते हैं.
Why can't we do that with our children?
और हम अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
Why are we embarrassed to keep on telling them what Jesus did for us?
और हम लज्जित क्यों होते हैं प्रभु ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया?
In the new covenant, we don't obey out of fear.
नई वाचा के अनुसार हम भय के कारण उसकी आज्ञा पालन नहीं करते.
Not out of selfishness to get material blessing.
या स्वार्थीपन से कि वास्तविक आशीष चाहिए इसलिए नहीं.
We don't obey because otherwise we might get sickness.
और हम इसलिए आज्ञा पालन नहीं करते कि हम बीमार ना पड़ जाएं.
No.
नहीं नहीं.
It's changed completely in the new covenant.
नई वाचा के अनुसार ये पूर्ण तौर से बदल चुका है.
All that you read in Deuteronomy 28.
जो कुछ भी आप व्यवस्था विवरण 28 में पढ़ते हैं.
Is being preached by false preachers today who preach the prosperity gospel.
और आज के गलत प्रचारकों के द्वारा ये आज भी प्रचार किया जाता है.
What we preach is.
और हम क्या प्रचार करते हैं?
John 14:15.
यूहन्ना 14:15.
If you love me, Jesus said, keep my commandments.
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे.
One sentence.
एक ही लव.
One sentence has replaced 68 verses in Deuteronomy 28.
यहाँ पे देखेगा जो यहाँ पे एक जो शब्द है उसने पूरे 28 व्यवस्था
68 verses in
68 जो वचन है उन सबको हटा दिया है
from Deuteronomy 28.
और व्यवस्था विवरण 28.
You must see the distinction between old covenant obedience and new covenant obedience.
देखिएगा ये जो भिन्नता नई वाचा और पुराने वाचा में.
So I want to ask all of you sitting here.
यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं.
Many of you have heard the new covenant gospel from me or from the internet. My YouTube messages for many years.
हो सकता है कि आपने नई वाचा को जो है मेरे YouTube में या मेरे द्वारा सुना होगा.
Why do you obey the Lord today?
आप परमेश्वर की आज्ञा पालन क्यों करते हैं आज के दिन?
First of all, are you serious about obeying what Jesus said?
क्या आप गंभीरता पूर्वक लेते हैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए?
One of the prayers I have prayed and I keep praying.
और ऐसा कौन सा प्रार्थना है जो मैं लगातार करता आ रहा हूँ?
I say, Lord Jesus.
मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह.
Before I leave this earth.
इस संसार को छोड़ने से पहले.
I want to obey every commandment given in the Bible for Christians.
और मैं चाहता हूँ कि मसीह लोगों के लिए जितनी भी आज्ञाएं तूने इस पवित्र कलाम में पवित्र वचन में दिया है उन सब का पालन करना चाहता हूँ.
Not the old covenant commandments of keeping the Sabbath or paying the tithe. No, I don't have interest in that.
पुराने नियम की आज्ञा यानी कि दशमांश देना है सबत का दिन को मानना है वो सब नहीं.
But every commandment given to Christians I want to obey before I leave this earth.
इस संसार को छोड़ने से पहले हर एक आज्ञाएं जो तूने मसीह लोगों के लिए दिया है उसका पालन करना चाहता हूँ.
Secondly.
और दूसरा.
I want to claim every promise given for Christians in the New Testament.
हर एक वायदा जो तूने मसीह लोगों के लिए दिया है वो मैं पाना चाहता हूँ.
There's no promise in the New Testament given that Christians will always be healed of all their sicknesses.
Aur aisa koi vaada naye niyam mein nahi diya ki masi log hamesha tandurust rahenge.
If it was written like that, I would have claimed it and preached it all my life.
Agar jo aisa diya hota to main bhi pure saal bhar jo zindagi bhar prachar karta aur usko mangta.
But there are many promises in the New Testament that we can overcome all sin that we are defeated by.
Lekin bahut sare aise vaade hain naye niyam mein ki hum apne paapon ke upar jay pa sakte hain aur usko paap ko parajit kar sakte hain.
I want to claim those promises.
Main un vaadon ko mangna chahta hu.
If you get 10 checks one day in your mail,
agar jo aapke mail mein 10 check aapko milta hai,
how many of them will you deposit in your bank?
Aap mein se kitne log usko jama karenge apne bank mein?
How many of them?
Aap mein se kitne log jama karenge?
No, out of those 10 checks, how many will you deposit?
कितने चेक जो चेक मिले हैं, कितने चेक 10 में से कितने चेक आप डालेंगे?
1, 2, 3
एक दो तीन
और ऑल 10
या फिर 10 के 10?
आई एम सेंसिबल, आई वुड डिपॉजिट ऑल 10
और मेरे अंदर दिमाग है मैं पूरे 10 के 10 जो है डालूंगा.
डू यू नो दैट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड आर लाइक चेक्स?
क्या आप जानते हैं परमेश्वर के जो वायदे हैं वो चेक के समान है?
यू नो व्हाई यू आर पुअर स्पिरिचुअली?
क्या आप जानते हैं आत्मिक तौर से आप गरीब क्यों हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नॉट looked for those checks, those promises in the New Testament.
क्योंकि परमेश्वर के जो वायदे इस कलाम में है, वचन में है, वो नहीं ढूंढ लिया.
You have not taken them in the name of Jesus to the bank of heaven and say, give this to me.
और आपने यीशु मसीह के नाम से उसको नहीं लिया स्वर्ग के उस खाते से.
Lord, you said sin will not have dominion over me.
और परमेश्वर आपने कहा है कि जो पाप है मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा.
Romans 6:14
और रोमियो 6 उसका 14.
In the name of Jesus,
यीशु मसीह के नाम से,
I want that in my life.
मैं वो चाहता हूं अपने जीवन में.
And I will not leave till this is cashed and becomes reality in my life.
और मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो असलियत में वो जो है कैश ना बन जाए.
Signed in the name of Jesus Christ.
और यीशु मसीह के नाम से उस पे हस्ताक्षर किया गया है.
Or James 4:7.
और याकूब 4 उसका 17.
Resist 7:7.
7 में लिखा है 4 उसका 7 में.
Resist the devil and he'll flee from you.
और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा.
In the name of Jesus.
यीशु के नाम से.
The devil can come nowhere near me, nowhere near my children, nowhere near my house.
शैतान मेरे पास ना मेरे बच्चों के पास ना मेरे घर के पास आ सकता है.
I can't resist the devil for somebody else, but I can resist the devil for my own family.
और शैतान किसी और के परिवार के लिए मैं नहीं उसका सामना कर सकता, लेकिन मैं अपने जीवन के लिए सामना कर सकता हूं.
I claim that in the name of Jesus.
और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं.
No demon can come anywhere near me or my family.
कोई दुष्टात्मा मेरे या मेरे परिवार के नजदीक नहीं आ सकता.
Or my house.
ना मेरे घर के नजदीक.
You know, once we had an experience.
एक बार ऐसा अनुभव हुआ हमारे जीवन में.
There was a non-Christian person living next door to us.
हमारे बाजू में एक गैर मसीह लोग रहते थे.
The old man there was sick.
और वो बुजुर्ग व्यक्ति है वो बीमार हुआ.
So they had some type of understanding that if they get a witch doctor and do some magic and they can transfer the sickness over to the other house.
उनका ऐसा समझ था कि अगर जो कोई जादू टोना करने वाले को बुलाएं तो उनकी बीमारी को जो है दूसरे किसी के घर पे भेज सकते हैं.
So we saw one day in the compound of that house somebody was stirring something in a pot.
और हमने देखा कि वहां पे वो घर वाले जो है कुछ मटके के अंदर कुछ बांध रहे थे.
And then morning they threw something over into our compound.
और उसके बाद सुबह-सुबह जो है हमारे कंपाउंड में फेंक दिया.
So of course we just threw it away.
और हमने यीशु के नाम से उसको फेंक दिया.
But my children were all small.
मेरे बच्चे बहुत छोटे थे.
I said this is a great opportunity to teach my children something about the power of the name of Jesus.
तो मैंने ऐसा सोचा कि ये प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य के बारे में मैं अपने बच्चों को सिखाने का एक अच्छा अवसर है.
I told them, I've often told you there are true preachers and fake preachers in Christianity.
मैंने हमेशा कहा है कि असली प्रचारक और नकली प्रचारक होते हैं मसीहत में.
And fake preachers preach for money.
और जो नकली प्रचारक होते हैं वो पैसे के लिए प्रचार करते हैं. I say
these witch doctors, there are some people who are really in contact with the devil and other people who just fool people to make money.
और वैसे ही जादू टोना करने वाले भी क्या होते हैं, वो असलियत में शैतान से जो है संपर्क रखते हैं और कुछ लोग जो है बेवकूफ बनाने के लिए भी होते हैं.
And this fellow who's doing here,
और जो यहाँ पे
कर रहा था, compound,
और जो हमारे बगल में,
he is a fake.
वो नकली था.
If he was in touch with the devil,
अगर जो वो शैतान के संपर्क में होता,
the devil would have told him, don't throw it into this compound, throw it into the other house, the other side.
तो वो शैतान उसको बता के देता कि हमारे कंपाउंड में नहीं, किसी और के कंपाउंड में भेजो.
Because it won't work on this side.
क्योंकि हमारे कंपाउंड के अंदर वो काम नहीं करता.
But he threw it into our compound, proves to me, guys are fake.
और उसने हमारे कंपाउंड में फेंका, ये सिद्ध करता है कि वो झूठा है.
And my children after 30 years have not forgotten the power of the name of Jesus.
Aur mere bacche jo hai 30 saal bitne ke baad bhi aaj bhi parmeshwar ki samarth ke bare mein nahi bhule.
We thank God for such opportunities.
Aur aise maukon ke liye humne parmeshwar ka dhanyawad kiya.
So in the New Testament we obey out of love.
और नए नियम में हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन प्रेम के स्वरूप करते हैं।
The reverse I would say is Jesus saying, if you don't love me, don't keep my commandments.
और उसके विपरीत तौर से प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर जो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन ना करो।
I don't want you to keep the commandments if you don't love me first.
अगर जो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो तो मैं नहीं चाहता तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो।
So how shall we love Jesus fervently?
हम किस प्रकार से लगातार परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं?
I told you three things that help me.
मैंने कहा कि तीन बातें हैं।
Number one.
पहला
1 John chapter 4.
पहला योना पहला अध्याय उसका 4
verse 19.
19 पहला योना.
We love him because he first loved us.
हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने सबसे पहले हमसे प्रेम किया.
1 John 4:19.
पहला योना 4 उसका 19.
So the more I understand how much he loved me, the more I will love him.
हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है? जितना अधिक हम उससे प्रेम करने लगते हैं तब समझते हैं.
So for 57 years I have tried to understand how much Jesus loved me.
37 साल तक जो है मैं समझने लगा कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है.
From the time I was converted,
जब से मेरा मन फिरा हुआ,
I used to meditate on the cross of Jesus.
मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में अध्ययन करता हूं, मनन करता हूं.
Yesterday I shared with you a little bit of what I understood of being forsaken by the Father on the cross.
और कल मैंने उसके बारे में किस प्रकार से पिता के द्वारा त्यागा जाना उसके बारे में प्रचार किया.
Nobody had to tell me to love Jesus. As I meditated on it, love came up.
और किसी को बताने की जरूरत नहीं, जैसे ही मैं उसके वचन के ऊपर मनन करने लगा तो खुद मुझे एहसास होने लगा उसके प्रेम के बारे में.
We tell people, come on, you must love Jesus, you must love Jesus.
और हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है.
But they still love the world.
लेकिन हम फिर भी संसार से प्रेम करते हैं.
But when you realize how much Jesus loved you,
जब आपको एहसास होता है कि कितना अधिक प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया,
spontaneously love will come in your heart.
और उसी समय आपके अंदर वो प्रेम जागरूक होने लगेगा.
And what will that love produce?
और वो जो प्रेम है वो क्या फल लाएगा?
If you love me, you'll keep my commandments.
अगर जो आप मुझसे प्रेम करेंगे तो तुम जो है मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे.
There's an English chorus in which one line says, I love him more and more.
और एक अंग्रेजी गाना का लफ्ज इस प्रकार से है कि मैं और अधिक प्रेम करता रहूंगा.
I love him more and more.
और अधिक प्रेम.
And when I stand upon the other shore, I love him ever more.
कि मैं और अधिक जो है प्रेम करता रहूंगा करके.
Whenever people sing that song.
और बहुत सारे लोग ये गीत गाते हैं.
I used to sing it like that first.
और मैं भी ऐसे ही गीत गाता था.
But now to make it more realistic to myself.
लेकिन मेरे लिए और भी यथार्थ होने के लिए.
I sing it, I'll obey him more and more.
मैं इस प्रकार से गाता हूँ कि मैं तेरी आज्ञाओं का और अधिक पालन करूंगा.
So that I don't fool myself.
ताकि मैं अपने आप को धोखा ना दूं, बेवकूफ ना बनूं.
I love him more and more. I can just think, oh yeah, it's all an emotional thing.
और ये भावुक बात होकर मैं जो है और अधिक गा सकता हूं कि मैं तुझसे और अधिक प्रेम करूंगा.
To save me from deceiving myself, I sing it as, I'll obey him more and more. I'll obey him more and more.
मैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को धोखा ना दूं, इसलिए मैं गाना गाता हूं कि मैं तेरी आज्ञाओं का और अधिक पालन करूंगा.
That comes through meditating on how much Jesus loved you.
और ये तभी होगा जब आप और अधिक मनन करेंगे उसके प्रेम उसके जो प्रेम के बारे में.
You heard me yesterday speak about what it meant for Jesus to experience hell for 3 hours on the cross.
और कल मैंने प्रचार किया था कि किस प्रकार से उसका अनुभव, प्रभु यीशु मसीह के अनुभव के बारे में, कि किस प्रकार से पिता से त्याग कर उसने अनुभव किया.
Those of you who are clever and intelligent can now preach that to others.
और आप में से जो चतुर लोग हैं वो प्रचार नहीं कर पाएंगे दूसरों को.
But it doesn't mean you got revelation on it.
और इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसका जो है प्रकाशन नहीं मिला.
Because you got it second hand from me.
क्योंकि आपको जो है दूसरे मतलब कि मुझसे जानकारी मिला है.
Now you, I always tell people, what you got second hand from me, you must take before God and say, Lord, make it first hand now.
और जो कुछ मुझसे प्राप्त होता है मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप उसको जो है परमेश्वर से सीधे जाके लो.
I am passing on to you revelation that I got.
और जो प्रकाशन मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ.
See what Paul told the Ephesians.
एफिसियों के खत में देखेगा पौलुस ने क्या कहा.
He said to them in Ephesians 1.
एफिसियों पहले अध्याय में है.
Ephesians is the most spiritual of all of Paul's letters.
और पौलुस के जितने खत हैं, जितने पत्री हैं, उनमें सबसे आत्मिक तौर से भरा हुआ है.
Among the churches, I think Ephesus was perhaps the most spiritual church because Paul spent 3 years there.
हो सकता है कि पौलुस के जमाने में एफेसियन सबसे ज्यादा आत्मिक कलीसिया रहा हो.
Now it says in Ephesians 1:17.
एक उसका 17 में लिखा हुआ है.
I'm praying that God will give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे.
And the eyes of your heart will be enlightened.
और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो.
He doesn't say read this 10 times and meditate on it.
उसने ऐसा नहीं कहा कि इन वचनों को 10 बार पढ़ो और इसका मनन करो.
Then you'll get understanding.
तब आप समझ सकते हैं.
And you can preach it.
और फिर प्रचार कर सकते
हैं. But he says, I'm praying that you'll get revelation.
लेकिन वो प्रार्थना करता है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान पैदा हो.
So what I said to you yesterday about Jesus suffering hell on the cross.
और कल जो मैंने समझाया कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे था तो वहाँ पे वो नरक में गया.
And then no, he experienced.
हाँ, उसने अनुभव किया, नरक का अनुभव किया.
On the cross.
वो क्रूस में.
And before he died, he said, "It's finished."
और मरने से पहले उसने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ.
It was finished before he died.
उसके मृत्यु से पहले कहा कि सब कुछ पूरा हुआ.
During those 3 hours, he experienced the punishment.
क्योंकि वो जो 3 घंटे थे, उसने अनुभव किया उसको.
And finished.
और कहा कि पूरा हुआ.
Then he said, "Father, I commend my spirit to you."
फिर कहता है कि पिता, मैं अपने प्राणों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ.
Now I pray that you will get revelation on that.
और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसके बारे में आपको प्रकाश मिले.
When you get revelation.
क्योंकि जब आपका वो प्रकाश मिलता है,
same thing will happen to you that happened to me.
जो चीज मैंने अनुभव किया वही आपको भी अनुभव होगा.
It will make you love Jesus fervently.
और वो आपको जो है प्रभु यीशु मसीह से बहुत दृढ़ता से प्रेम करने के लिए जो है बाध्य करेगा.
Yesterday you heard and understood it.
और कल आपने सुना और समझ गए.
Your love for Jesus is probably not increased today from yesterday.
और हो सकता है कि कल से और अधिक जो है प्रेम करना नहीं बढ़ा होगा.
Even though you understood it.
लेकिन अगर जो आप समझ भी गए हो,
what you need is revelation.
तो आपको अब जरूरत क्या है, एक प्रकाश की.
God says in your heart, let there be light, and there is light.
और जैसे कि परमेश्वर बोले कि जैसे कि ज्योति हो बोला वैसा हो गया, तुम्हारे दिल में भी वैसे ज्योति जगे.
So that's the first thing.
और यही सबसे बड़ी बात है.
Paul told Timothy also in 2 Timothy 2.
और पौलुस ने तिमोथी से भी कहा, पहला तिमोथी दूसरा अध्याय में.
In 2 Timothy 2.
पहला तिमोथी दूसरा अध्याय
verse 7
में वचन में.
Consider what I say and the Lord will give you understanding.
हाँ, जो मैं सिखाता हूँ उस पर ध्यान दे तो परमेश्वर समझ देगा.
He didn't say read it 10 times.
उसने ये नहीं कहा कि 10 बार पढ़ो.
Try and understand what I'm saying.
क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा
हूँ? No, he says the Lord has to give you understanding.
वो बोलता है कि परमेश्वर स्वयं आपको समझ देना चाहिए.
You've been with me 25 years, Timothy.
वो मैं तुम्हारे साथ 25 साल तक नहीं रहूंगा तिमोथी.
No, you have been with me.
हाँ, मेरे साथ तुम 25 साल तक रहे हो.
But that's not good enough.
लेकिन वो काफी नहीं.
The Lord has to give you understanding.
परमेश्वर स्वयं तुम्हें जो है समझ देना चाहिए.
You know, I have preached these messages in CFC Bangalore for 41 years.
और 41 साल तक मैंने CFC Bangalore में ये प्रचार किया.
And I've seen some people really gripped by it.
और मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने उसको जकड़ लिया है, पकड़ लिया.
Other people not gripped.
और कुछ लोगों ने नहीं पकड़ा.
But if I ask them to explain it, they can explain it.
अगर जो मैं उनसे कहूं कि इसको समझा तो वो नहीं समझा पाएंगे.
Why this difference?
ऐसा भिन्नता क्यों?
Some got revelation.
कुछ लोगों को वो प्रकाशन मिला.
The others just use their cleverness to understand it and
और दूसरे लोगों ने अपनी समझ का इस्तेमाल किया उसको समझने के लिए.
So number one,
पहला,
to know how much Jesus loved me produces love for him.
और परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करता है वो समझना है तो उसके प्रति आपको प्रेम जागृत करना है.
The second,
और दूसरा,
Luke 7,
लूका 7,
verse 47,
47.
The one who has been forgiven much loves much. The one who has been forgiven little loves little.
जिसके जो पाप है ज्यादा क्षमा किए गए हैं वो ज्यादा प्रेम करेगा और जिसके पाप कम क्षमा किए गए वो कम प्रेम करेगा.
So,
इसलिए
Is there anybody here who's been forgiven very little?
क्या यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके थोड़े से पाप क्षमा किए गए हों?
I have been forgiven very much.
मेरा बहुत अधिक पाप से मुझे क्षमा मिला है.
I never murdered anybody in my life. I never murdered anybody in my life.
मैंने किसी का कत्ल नहीं किया जीवन में.
I never committed adultery.
कोई व्यभिचार नहीं किया.
I never stole a bank.
میں نے کوئی چوری نہیں کیا.
But
لیکن
I'm a great sinner.
لیکن میں بہت بڑا ایک پاپی ہوں.
Paul said I've lived with a good conscience all my life.
اور پولس کہتا ہے کہ میں ایک اچھے وویک کے ساتھ پورے جیون بھر جیا.
Acts 23:1. Acts of the Apostles.
پریرتوں کے کام میں
23:1.
23 اس کے 1 میں.
I've lived with a good conscience all my life.
پورے جیون بھر اچھے وویک کے ساتھ جیا.
Yet he said.
پھر بھی وہ کہتا ہے.
I am the chief of sinners in the whole world.
کہ سب سے بڑا پاپی ویکتی ہوں کر کے اس
سب. How can a man who lived with a good conscience all his life say I am the greatest sinner in the world?
پورے جیون کال میں ایک ویکتی اچھے وویک کے ساتھ جیون جینے کے بعد کس پرکار سے کہہ سکتا ہے کہ میں سب سے بڑا پاپی ہوں؟
I could not understand it till I discovered it myself.
اور میں اس کو سمجھ نہیں پایا جب تک میں نے اس کا کھوج نہیں کیا.
I can honestly say
میں بتا سکتا ہوں ایمانداری کے ساتھ.
Times in my life where I really felt I was the greatest sinner in the whole world.
اور ایسا سمے میرے جیون میں آیا جب مجھے ایسا احساس ہوا کہ میں سب سے بڑا پاپی ویکتی ہوں.
Just like Paul I felt.
پولوس کی طرح مجھے لگا.
And I discovered how.
اور ایسا مجھے میں نے ایسا کھوج کیا.
The closer you come to God.
جتنا ادھک آپ پرمیشور کے نزدیک آتے ہیں.
Ordinary sins become magnified a million times.
جو سادھارن پاپ ہوتے ہیں وہ اس کی جو شکل ہے آکرتی بڑھنے لگتی ہے کئی گنا.
You look through a giant microscope at an ant, it can look like an elephant.
ایسا لگے گا کہ مائکروسکوپ میں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے سے چیٹی کو اور وہ بڑا ہاتھی کے سامان لگے گا.
So sin becomes magnified when you come closer to God.
جیسے آپ پرمیشور کے نزدیک آتے ہیں تو آپ کے چھوٹے چھوٹے پاپ بھی بڑے لگنے لگتے ہیں.
And the man who's lived with a good conscience feels he's the greatest sinner in the world.
اور جو اچھے وویک کے ساتھ جیون جیتا ہے اس کو بھی لگے گا کہ میں بہت بڑا پاپی ہوں.
So when you feel you've sinned little, it shows that you're very far away from God.
اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر بہت کم پاپ ہے اس کا ارتھ ہے کہ آپ پرمیشور سے بہت دور ہیں.
But when you see the seriousness of sin,
لیکن جب آپ کو پاپ کی گمبھیرتا کو احساس ہوتا ہے,
especially sins that you committed after you were born again,
اور خاص کر کے من پھراؤ ادھار پانے کے بعد جو پاپ آپ نے کیا ہے,
one lie before you're converted is not as serious as one lie after you're converted.
اور آپ کے من پھرانے سے پہلے جو جھوٹ بولا وہ من پھرانے کے بعد جو جھوٹ بولا وہ ایک سمان نہیں ہے.
To tell a lie after you're born again is like telling 10,000 lies before you were converted.
اگر جو آپ ادھار پانے کے بعد ایک جھوٹ بولتے ہیں تو وہ من پھراؤ سے پہلے 10,000 جھوٹ کے برابر ہے.
To have one dirty thought after you're converted is like having 10,000 dirty thoughts as an unconverted person.
ادھار پانے کے بعد ایک غلط وچار آپ کے من میں آتا ہے تو وہ ادھار پانے سے پہلے 10,000 جو گناہ کیا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے.
When you see that,
جب آپ یہ دیکھتے ہیں,
you say, oh Lord, how much you have forgiven me.
تب آپ کو احساس ہوگا کہ پرمیشور کتنا ادھک تو نے کھما کیا ہے.
He who is forgiven much loves much.
اور جس کا جتنا بڑا پاپ کھما ہوا ہے اتنا ادھک مجھ سے پریم کرتا ہے.
And the more I discovered how much Jesus has forgiven me.
اور جب مجھے کھوج کیا کہ کتنا ادھک پرمیشور نے مجھ سے پریم کیا,
it made me
کھما کیا,
love Jesus more.
تو اور ادھک مجھے پریم کرنے کے لیے بادھت کیا.
And it made it very easy for me to forgive other people no matter what they did to me.
اور پھر یہ میرے لیے بہت آسان ہو گیا دوسروں کو کھما کرنا چاہے وہ میرے خلاف کچھ بھی کرے.
Thirdly,
اور تیسرا,
Matthew 6:24.
متی 6 اس کا 24.
No one can serve two masters.
کوئی بھی دو مالکوں کی سیوا نہیں کر سکتے.
You hate the one, you love the other.
ایک سے نفرت کریں گے دوسرے پریم کریں گے.
So to love the other you must hate the one.
ایک سے پریم کرنے کے لیے دوسرے سے نفرت کرنا ضروری ہے.
Now if you were to ask the average Christian who are the two masters,
اگر جو آپ پوچھیں گے وہ دو سوامی کون ہیں,
he'll say God and the devil. They will say God and Satan.
اور وہ بولیں گے کہ وہ ایک پرمیشور اور دوسرا شیطان.
But have you ever heard anybody who believes that you can serve God and Satan together?
کیا کبھی آپ نے سنا ہے کسی کو کہتے ہوئے کہ ایک ساتھ شیطان اور پرمیشور کی سیوا کر سکتے ہیں؟
Nobody believes that.
کوئی بھی وشواس نہیں کرے گا.
But the two masters Jesus mentioned are not God and Satan.
یہاں پہ جو دو سوامی کے بارے میں لکھا ہے وہ پرمیشور اور شیطان نہیں.
It's God and Mammon.
وہ ہے پرمیشور اور میمن.
Mammon means money.
میمن کا مطلب ہے پیسہ.
And material wealth of every sort.
اور جو وستوک جو آشیش ہیں وہ
ہاؤس,
گھر,
کار, شیئرز,
اور جو شیئر ہے,
اینڈ آل دی تھنگز دیٹ کانسٹیٹیوٹ میٹیریل ویلتھ,
اور جو ہی واستوک جو آشیش ہیں وہ.
Listen to this.
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा.
There are two masters.
दो स्वामी.
God and material wealth.
एक है परमेश्वर और दूसरा है जो वस्तु आपके पास है.
These are the words of Jesus.
ये परमेश्वर के वचन है.
The more you love one, whether you know it or not, you'll hate the other.
आप एक से प्रेम करने लगेंगे तो दूसरे से नफरत करने लगेंगे.
Whether you like it or not.
वो आप चाहे या ना चाहे.
So the way to love one more is to hate the other more.
तो एक रास्ता ये है कि आप एक से प्रेम करने लगे अधिक से अधिक तो दूसरे से नफरत करने लगेंगे.
Or to use it in picture language.
अगर जो हम तस्वीर के लैंग्वेज में बोले भाषा में बोले.
Money is here.
यहाँ पे एक तरफ पैसा है.
Material wealth.
यानी कि जो भी वस्तु है.
God is here.
और दूसरी तरफ परमेश्वर.
To go closer to God, you must go further away from material wealth.
आपको परमेश्वर के करीब या नजदीक जाने के लिए पैसे से दूर होना पड़ेगा.
If you are pursuing after material wealth, you are going away from God.
अगर जो आप धन के नजदीक जाएंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे.
Those are not my words.
ये मेरे वचन नहीं.
Jesus words.
ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है.
You want to love Jesus more?
क्या आप प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करना चाहते हैं?
Run away from the love of money.
तो प्रेम जो धन के प्रेम है उससे दूर भागे.
It's one of the things the Lord gripped me with when I was converted.
और जब मैं मन फिराए उद्धार में आया तो परमेश्वर ने यही चीज सिखाया.
I can stand before God today.
और आज मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता हूं.
And say that for the last 57 years I never went after money.
और 57 साल से मैं आज तक पैसे के पीछे नहीं भागा.
I sought to love Jesus.
और मैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे गया.
When I was working,
जब मैं काम करता था,
I did not go after money.
मैं कभी पैसे के पीछे नहीं गया.
Most of my money I gave for God's work.
और ज्यादातर पैसे मैंने परमेश्वर के कार्य के लिए दिया.
I was single and I earned a lot of money.
और मैं अकेला था और मैंने बहुत पैसे कमाए.
When I left my job 50 years ago to serve the Lord.
और 50 साल पहले जब मैंने नौकरी छोड़ा परमेश्वर की सेवा करने के लिए.
I decided I will never go anywhere to preach in order to make money.
और मैंने यह निर्णय लिया कि कहीं पे भी पैसे के लिए मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा.
Even when my wife and I were so poor.
और जब मैं और मेरी पत्नी बहुत गरीबी की अवस्था में थे.
I'll never go to preach to make money. No.
लेकिन मैंने कभी ऐसा कभी नहीं किया कि पैसे के लिए मैं प्रचार करूं.
I want to love you.
मैंने कहा कि परमेश्वर मैं तुझसे ज्यादा प्यार करना चाहता.
Discovered the more you run away from money, the closer you get to God.
और मैंने ये खोज किया कि आप जितने पैसे से भागेंगे उतना करीबी आप जो है परमेश्वर के बढ़ेंगे.
You know why you don't love Jesus?
क्या आप जानते हैं कि आप क्यों परमेश्वर से प्यार नहीं करते?
I gave you three reasons.
मैंने तीन कारण दिए.
You don't spend time meditating on how much Jesus loved you.
पहला कि आप मनन नहीं करते कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है.
It doesn't move your heart when you think of Jesus dying for your sins.
और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा करके जब आप गाते हैं या सोचते हैं तो आपके दिल में कोई चलन नहीं होता.
You don't meditate on how much you have been forgiven.
और दूसरा आपके पाप कितना क्षमा हुए हैं उसके बारे में विचार नहीं करते.
Third, you don't run away from the love of money.
और तीसरा आप पैसे के लालच या पैसे के प्रेम से नहीं भागते.
You can talk about loving Jesus for the next 50 years, you will be in the same position as you are today.
अगले 50 साल तक जो है आप प्रभु के प्रेम के बारे में प्रचार करेंगे लेकिन एक ही स्तर पे रहेंगे.
You can sing with great emotion, my Jesus, I love thee, I give up all the pleasures of sin for you.
और आप बहुत भावुक होकर बोलेंगे कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं और सारे दुनिया के आनंद को छोड़ता हूं.
It will be words that disappear by the end of that song.
और गाना के खत्म होने से पहले वो खत्म भी हो जाएगा.
Are you serious?
क्या आप गंभीर हैं?
Are you people serious? Have you come here to really become serious Christians?
क्या आप यहां पर एक गंभीर विश्वासी होने के लिए आए हैं?
Then I tell you the most important commandment is to love Jesus with all your heart.
तो मैं प्रमुख एक आज्ञा बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को पूरे दिल से प्रेम करें.
There's only one thing we can say at the end.
आखिर में केवल एक ही शब्द हम कह सकते हैं.
He who has ears to hear, let him hear.
और जिसके कान हो वो सुने.
Jesus knew that many will understand, but they don't have ears to hear and respond.
और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि समझ है सबके पास समझने के लिए लेकिन उनके पास कान नहीं है सुनने के लिए.
I hope it'll be different for you. I hope it'll be different for you.
हाँ, मैं जानता हूँ कि वो आपके लिए एक भिन्न व्यक्ति हैं.
I hope it'll be like that.
और मैं जानता हूँ वो वैसे रहेंगे.
मेरा आशा है.
मुझे आशा है
कि ऐसा होगा आप लोगों के लिए. I'm not sure that it'll be like that.
मैं नहीं पूरी तरीके से नहीं भरोसा रख सकता कि ऐसा होगा करके.
But I wish it'll be like that.
लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसे आपके लिए हो.
Let's pray.
आइए हम प्रार्थना करें.
Heavenly Father.
स्वर्गीय पिता.
I pray that what we have heard will be deeply imprinted on our hearts.
पिता परमेश्वर जो हमने बोला है वो हमारे हृदय में छप जाए.
Pray in Jesus' name.
यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ.
Amen.